ओम शांति, ओम शांति। शिव बाबा कहते हैं कि बच्चे, मैं आया हूं तुम्हें बेहद विश्व का मालिक बनाने। भक्ति मार्ग में तो हम भगवान से छोटी छोटी बात चीजें मांगते थे, फिर कहते थे दया करो, रहम करो, कृपा करो, आशीर्वाद करो। तो छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी चीजें। तो भगवान कहते हैं मैं ये छोटी छोटी चीजों के लिए नहीं आता हूं, मैं आता हूं बेहद विश्व का तुम्हें मालिक बनाने। और जब बेहद विश्व का मालिक बन जाते हो तो ये सब कुछ आपको प्राप्त हो जाता है। जो भी तुम इस समय मांगते हो वो सब तुम्हें प्राप्त हो जाता है। परंतु उसके लिए क्या करना होगा, सिर्फ पवित्र बनो और योगी बनो, बस। सब संबंध मेरे से जोड़ो तो मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। सब कुछ माना सब कुछ। सब कुछ में क्या क्या आ जाता है, पूरी धरती, पूरा आकाश, पूरा समुद्र, सब पर तुम्हारा राज्य हो जाएगा। इसलिए गीत कौन सा है आज का, कौन सा होगा गीत, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। अभी तो देखो दुनिया में कितनी हदें हैं। मेरे ये पानी मेरा है, इससे तुम्हारा जहाज नहीं जा सकता है। ये आकाश हमारा है, इस आकाश से तुम्हारा जहाज नहीं जा सकता है। तो पानी भी मेरा, आकाश भी मेरा, ये जमीन भी मेरी। तो ये हदें बन गई है आज की दुनिया में, कितनी हदें हैं। अभी भी ये हदें ही तो है जिसके कारण युद्ध हो रहे हैं। और बाबा कहते हैं बाहुबल से कोई भी जीत नहीं पा सकता है, सीधा बाबा कहते हैं, परंतु योग बल से तुम सारे विश्व को जीत लेते हो। तो बाबा हमें वो योग बल सिखाते हैं, देते हैं, जिससे हम धरती तो क्या, आकाश तो क्या, समुद्र तो क्या, सब पर हम विजय पा लेते हैं। तो इतना नशा बाबा कहते हैं तुम बच्चों को होना चाहिए। पर केवल नशा रखने से नहीं होगा, उसके लिए क्या पुरुषार्थ करना है वो भी बाबा बताते हैं। तो पुरुषार्थ भी बताते हैं, फिर नशा भी चढ़ाते हैं। अब जितना जो करे, तो आज बाबा ये भी कहते हैं ना, जो जितना करे, हर एक के पुरुषार्थ पर निर्भर है हर एक। फिर बाबा ये भी कहते हैं कि नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, तो सब नंबरवार है। बाबा तो साक्षी दृष्टा होके देखते हैं कैसे बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हैं, कराते भी हैं, लेकिन फिर देखते भी हैं, क्योंकि करना तो हमें ही है, बाबा तो नहीं करेंगे। तो आज बाबा ने नशा भी चढ़ाया है, लेकिन उसके लिए पुरुषार्थ क्या करना है वो भी सुनाया है। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य, आज 13/4/2026 है। मीठे बच्चे, अभी तुम ऐसी दुनिया के मालिक बनते हो जहां कोई हद नहीं। योग बल से सारे विश्व की राजाई लेना, ये भी वंडर है। मनुष्य ये समझ ही नहीं सकता कि योग बल से कोई सारे विश्व की राजाई भी ली जा सकती है। वो तो समझते हैं केवल हथियारों के बल से, बाहु बल से ही हम दूसरे का छीन सकते हैं, ले सकते हैं। लेकिन बाबा कहे तुम ऐसी दुनिया के मालिक बनते हो जहाँ कोई हद नहीं, योग बल से सारे विश्व की राजाई लेना ये भी वंडर है, कोई सोच भी नहीं सकता है ये बाबा हमें देते हैं। प्रश्न है, ड्रामा के किस बंधन में बाप भी बंधा हुआ है? कौन सा बंधन है जिसमें बाप भी बंधा हुआ है? भक्ति मार्ग में भगवान को पुकारते ना, आओ आओ आकर के हमें पावन बनाओ, आओ ये हमें इस बंधन से छुड़ाओ, आओ छोटी छोटी बातों के लिए बुलाते। लेकिन बाबा कहते ड्रामा में मेरा पार्ट है केवल एक ही बार आना, ऐसे नहीं जब बुलाया भक्त ने और मैं आ गया। वैसे तो भक्ति मार्ग में कहते भक्तों पर जब भीड़ पड़ी तो भगवान भागे भागे आया, नंगे पैर आया। लेकिन बाबा कहते मैं ऐसे नहीं आता हूँ, मैं तो अपने समय पर आता हूँ जब मेरा ड्रामा में पार्ट है, और आता भी तब हूँ जब एकदम तमो प्रधान बन जाते हैं, बीच बीच में नहीं आता हूँ मैं। तो आज बाबा अपना राज भी समझाते हैं। बाबा कहते हैं मुझे तुम बच्चों के सम्मुख तो आना ही है, तुम बुलाते हो तो मुझे तुम बच्चों के सम्मुख तो आना ही है। मैं इस बंधन में बंधा हूँ तो मुझे आना है, ये भी एक बंधन है। ऐसे नहीं कि मैं नहीं आना चाहूँ तो मैं नहीं आऊँ ना, दुनिया में तो ना कोई किसको बुलाते नहीं मैं नहीं आऊँगा, तो वो मना भी कर सकता है। लेकिन भगवान को हम पुकारते तो भगवान को आना भी है, उस बंधन में भी बंधा हुआ है तो कि उनको आना ही है। जब तक मैं न आऊं तब तक मूंझा हुआ सूत सुलझ नहीं सकता है। बाकी मैं तुम्हारे पर कोई कृपा व आशीर्वाद नहीं करने आता हूँ, मैं कोई मरे हुए को जिंदा नहीं करने आता हूँ, छोटी छोटी चीजों के लिए नहीं आता हूँ। मैं तो आता ही हूँ तुम्हें पतित से पावन करने, बस जो मुख्य बात है भगवान का कार्य कर्तव्य पतितों को पावन बनाना। मैं तो आता ही हूँ तुम्हें पतित से पावन बनाने, गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया। ओम शांति। गीत के अक्षर सुन करके तुम बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए, हो जाते हैं रोमांच खड़े ऐसे ऐसे गीत सुनकर, क्योंकि सम्मुख बैठे हैं बाबा, सम्मुख हमें समझा रहे हैं, तो सम्मुख बैठे हैं तो रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। सारी दुनिया में भल कितने भी विद्वान पंडित आचार्य हैं, कोई भी मनुष्य मात्र को ये पता नहीं है कि बेहद का बाप हर 5000 वर्ष के बाद आते हैं। बच्चे ही जानते हैं कि भगवान हर 5000 वर्ष के बाद आते हैं। बच्चे कहते भी हैं, क्या कहते हैं बच्चे, जैसा हूँ वैसा हूँ मैं तुम्हारा हूँ। सबने यही कहा ना, बाबा हम जैसे हैं हम तुम्हारे हैं। फिर बाप भी कहते हैं, बाप भी क्या कहते हैं, जैसे हो वैसे हो मेरे बच्चे हो। सब प्रकार के बच्चे हैं लेकिन सब भगवान के बच्चे हैं। तुम भी जानते हो वो सब आत्माओं का बाप है, सब पुकारते हैं बाप समझाते हैं। देखो रावण का कितना परछाया है, सारी दुनिया पर रावण का परछाया है, एक भी समझ नहीं सकता कि जिसको हम परम पिता परमात्मा कहते हैं फिर वो पिता कहने से खुशी क्यों नहीं होती है। वो पिता है हमारा तो पिता कहने से खुशी क्यों नहीं होती है, ये समझ नहीं सकते, ये भूल गए हैं कि वो पिता है तो वर्षा देता, हमें कितना वर्षा मिलता है उनसे ये तो जानते ही नहीं है, ये भूल गए हैं। ये बाबा ही हमें वर्षा देते हैं, हा? जिस पिता को बुलाते हैं उस वो बाबा ही हमें वर्षा देते हैं, जिस बाप खुद ही समझाते हैं ये इतनी सहज बात भी कोई समझ नहीं सकते। तो बाप समझाते हैं ये तो वही है, मैं कौन हूँ, मैं वही हूँ जिसको सारी दुनिया पुकारती है, वो खुदा हे राम। ऐसे पुकारते पुकारते प्राण भी छोड़ देते हैं। भक्ति मार्ग में ऐसे भी है, अगर तुम नहीं मिलोगे तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगा, और नहीं मिला तो सचमुच प्राण भी त्याग देते हैं। तो ऐसे पुकारते पुकारते प्राण भी छोड़ देते हैं। यहाँ वो बाप तुमको पढ़ाते हैं, कहाँ भक्ति मार्ग में प्राण भी छोड़ देते हैं पर मिलता नहीं, और यहाँ वो बाप हमको पढ़ाते हैं। तुम्हारी बुद्धि अब वहाँ चली गई है, कहाँ चली गई है, ऊपर। तुम्हारी बुद्धि अब वहाँ चली गई है, बाबा आया हुआ है, वहाँ से बाबा आया हुआ है। कल्प पहले माफिक, कल्प कल्प बाबा आकर पति से पावन बनाए, दुर्गति से सदगति में ले जाते हैं। गाते भी हैं सर्व का पतित पावन बाप। अभी तुम बच्चे उनके सम्मुख बैठे हो, तुम हो कौन हो, तुम हो मोस्ट बिलवेड स्वीट चिल्ड्रन। भारतवासियों की बात है, तो बच्चे तो सब है लेकिन भारतवासी मोस्ट बिलवेड स्वीट चिल्ड्रन है। बाप भी भारत में ही जन्म लेते हैं। बाप कहते हैं मैं भारत में जन्म लेता हूँ तो जरूर वही प्यारे लगेंगे, जो भारत के वासी हैं वही प्यारे लगेंगे क्योंकि मैं भारत में जन्म लेता हूँ। याद भी सब उनको करते हैं, जो जिस धर्म के हैं वो अपने धर्म स्थापक को याद करते हैं। पर भारतवासी ये नहीं जानते कि, क्या नहीं जानते कि भारत, ये नहीं जानते कि हम आदि सनातन धर्म के थे। बुलाते जरूर है, पुकारते जरूर है, कहते जरूर है सनातन सनातन, लेकिन हम ही उस सनातन धर्म के थे। बाबा समझाते हैं भारत ही प्राचीन देश है, तो फिर कई नहीं समझते ना, जब बाबा कहते हैं भारत ही सबसे प्राचीन देश है, यहाँ ही आदि सनातन देवी देवता धर्म है, यहाँ ही भगवान आते हैं, परंतु कई लोग ये बातें नहीं समझते हैं और क्या कह देते हैं, हाँ भारत ही प्राचीन देश है हम कहते हैं, तो वो क्या कहते हैं, कौन कहता है कि भारत ही सिर्फ था 5000 साल पहले, केवल भारत ही था, ये कौन कहते हैं। अनेक अनेक बातें सुनते हैं, कोई क्या कहेंगे, कोई क्या, कोई फिर कहते हैं कि कौन कहता है कि गीता शिव परमात्मा ने गाई है, कौन कहता है, अरे भगवान खुद कहते हैं, फिर वो कहते कौन कहता है, श्री कृष्ण भी तो परमात्मा था ऐसे कहते हैं, उसने ही गाई है गीता, ये कह देते हैं। फिर कह देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, कौन कहता है सर्वव्यापी नहीं है, तो कौन कहता है, कौन कहता है, पुष्ट कहते रहते हैं। उनका ही सारा खेल है समझते हैं, वही सब कुछ कर रहा है, भगवान के ही ये सब रूप है ऐसे समझते हैं। भगवान ही अनेक रूप धर लीला करते हैं, भगवान जो चाहे सो कर सकते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो माया भी कितनी प्रबल है, ये सब कौन कहलवा रहा है, उनसे माया ही कहलवा रही है। सर्वव्यापी है गीता का भगवान कृष्ण है, सब उसके ही रूप है, वही सब कर रहा है, तो बाबा कहते हैं ये माया भी कितनी प्रबल है। अब माया और किस रूप में प्रबल है, आज कहते हैं बाबा हम वर्षा जरूर लेंगे, जो बाबा सुनाते वो समझ करके निश्चय भी करते हैं कि बाबा आप जो सुनाते वो सही है, हम वैसे ही करेंगे जैसे आप कहते हो, बाबा हम वर्षा जरूर लेंगे, हम नर से नारायण जरूर बनेंगे, और कल देखो तो है ही नहीं। ओम शांति, यहाँ भागंती हो गया, कल तो होंगे ही नहीं। तुम जानते भी हो कितने चले गए, फारकती दे दी, पिता को ही छोड़ के चले गए, फारकती दे दी। मम्मा को मोटर में घुमाते करते थे, मम्मा को क्योंकि अपनी गाड़ियां तो थी नहीं, तो मम्मा को वो मोटर में घुमाते थे। आज है नहीं, ऐसे अच्छे अच्छे भी माया के संग में आकर ऐसे गिरते हैं जो एकदम नीचे पड़ जाते हैं। जिन्होंने कल्प पहले समझा है वही समझेंगे आजकल दुनिया में क्या लगा हुआ है, सचमुच क्या लगा हुआ है। और तुम बच्चे अपने को देखो क्या बनते हो, दुनिया में क्या लगा हुआ है और आप बच्चे क्या बनते हो। गीत सुना ना, क्या बनते हो, सब कुछ हमारा होगा। कहते हैं हम ऐसा वर्षा लेते हैं जो हम सारे विश्व के मालिक बन जाते हैं। दुनिया में तो छोटे से टुकड़े के लिए भी लड़ रहे हैं और हम बच्चे सारे विश्व का मालिक बन रहे हैं, सारे विश्व के मालिक बन जाते हैं। वहाँ अब सत्युग में क्या होगा, वहाँ कोई भी हद की बात ही नहीं होगी। यहाँ तो कितने हदें लगी हुई है, कितनी हदें लगी हुई है। कहते हैं हमारे आसमान में तुम्हारा एरोप्लेन आएगा तो शूट कर देंगे, करते हैं ना, शूट कर लेते हैं अगर बाय चांस उसके आसमान में गया कोई प्लेन, तो तुम्हारा एरोप्लेन आएगा तो हम शूट कर देंगे। वहाँ तो कोई हद की बात ही नहीं रहती है। ये भी गीत गाते हैं, गीत गाते हैं, सब कुछ मेरा, जमीन आसमान सब। तो बाबा कहते हैं ये गीत भी गाते हैं परंतु अर्थ थोड़ी समझते हैं कि कैसे जमीन आकाश सब कुछ हमारा होगा। तुम तो जानते हो बरोबर बाबा से फिर से हम विश्व का मालिक बन रहे हैं। अनेक बार ये 84 का चक्र लगाया है, थोड़ा समय करके दुख पाया है। बाबा कहते सारा कल्प तो सुखी पाया है, बस ये थोड़ा सा अंतिम समय दुख पाया है। कई कहते ना अभी 80 साल की आयु है, 90 साल की आयु है, लेकिन सारी आयु कहते कभी एक गोली नहीं खाई, और जब उनकी अंत घड़ी आती है सब एक साथ आ जाता है, सब एक साथ और देखो तो दो दिन में ओम शांति, सारा जीवन कभी एक गोली भी नहीं खाई, ऐसे बहुत है। तो बाबा कहते हैं तो थोड़ा समय करके दुख पाया है, बाकी तो सारा समय तो सुखी हमने पाया है। सुख तो बहुत है, इसीलिए बाबा कहते हैं तुम बच्चों को मैं अपार सुख देता हूँ, अब माया से हारो मत। अगर अपार सुख लेना है तो माया से हारो मत। बाप के तो बच्चे ढेर हैं, सब तो एक जैसे सपूत हो नहीं सकते हैं। कोई को 5-7 बच्चे होते हैं, उनमें 1-2 कपूत होते हैं तो माथा ही खराब कर देते हैं। बाकी सब बच्चे बहुत अच्छे पर एक कपूत है तो बाप के नाक में दम कर देता है ना, तो बाबा कहते हैं वो माथा ही खराब कर देते हैं, लाखों करोड़ों रुपया उड़ा देते हैं। बाप एकदम धर्मात्मा, देखिए भक्ति मार्ग में पिता इतना अच्छा व्यक्ति, बाप एकदम धर्मात्मा और बच्चे बिल्कुल चट खाते में सब उड़ाने वाले। बाबा ने ऐसे बहुत मिसाल देखे हैं, अब तो इसलिए बाबा बच्चों से भेंट करते हैं, बाबा के तो सब बच्चे लेकिन कोई कैसे कोई कैसे। तुम बच्चे जानते हो सारी दुनिया इस बेहद बाप के बच्चे हैं। बाप कहते हैं मेरा बर्थ प्लेस ये भारत है, भारत से बाबा को बहुत प्यार है, मेरा ये जन्म स्थान भारत है। हर एक को अपनी धरती का कदर रहता है ना, कैसे कदर रहता है, दूसरी कोई जगह शरीर छोड़ते हैं तो फिर उनको अपने गांव में ले आते हैं कि वहीं उनका अंतिम संस्कार करना है, क्योंकि यहाँ ही उसका जन्म हुआ था, यहीं की माटी है। तो कहीं भी जगह शरीर छोड़ते हैं तो फिर उनको अपने गांव में ले आते हैं। बाप भी भारत में ही आते हैं, तुम भारतवासियों को फिर से बेहद का वर्षा देते हैं। तुम बच्चे कहेंगे, हम फिर से सो देवता विश्व का मालिक बन रहे हैं। हम मालिक थे, याद करो, हम मालिक थे और अब क्या हाल हो गया है, का क्या हाल हो गया है, कहां से कहां आकर के पड़े हैं, 84 जन्म भोगते भोगते ये हाल आकर के हुआ है। ड्रामा को तो समझना है ना, इसको कहा जाता है, क्या है ये ड्रामा, क्या समझना है इस ड्रामा का, इसको कहा जाता है हार और जीत का खेल। हमने जीता, फिर हारा, फिर अभी जीतना है, ये हार और जीत का खेल है। भारत का ही ये खेल है, इसमें तुम्हारा पार्ट है, हार और जीत में तुम्हारा पार्ट है। तुम ब्राह्मणों का सबसे ऊंचे से ऊंचा पार्ट है इस ड्रामा में, चढ़ता है निशा, सबसे ऊंचे से ऊंचा पार्ट है हमारा इस ड्रामा में, हम ही हीरो हीरोइन है इस ड्रामा के। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो, बहुत सुख भोगते हो, तुम्हारे जितना सुख और कोई भोग नहीं सकते, और धर्म वाले भी इतना सुख नहीं भोग सकते जितना तुम सुख भोगते हो। नाम है स्वर्ग, ये है नर्क, यहाँ के सुख तो कागविष्ठा समान है। आज लखपति है, दूसरे जन्म में क्या बनेंगे कुछ पता थोड़ी है, आज तो करोड़पति पद्मपति, लेकिन उसने दान पुण्य कुछ किया ही नहीं, सब जमा करता गया, किसी को सहयोग दिया नहीं, मदद किया नहीं, तो क्या वो धन छसा चलेगा, अगले जन्म में जाएगा तो वो तो कंगाल ही रहेगा, कि भले इस जन्म में वो करोड़पति था, लेकिन जितना दान भी करेंगे उतना ही तो वो भाग्य बनेगा ना। तो बाबा कहते दूसरे जन्म में क्या बनेगा कुछ पता थोड़ी है, ये है ही पाप आत्माओं की दुनिया, सतयुग है पुण्य आत्माओं की दुनिया। तुम पुण्य आत्मा बन रहे हो तो कभी भी पाप नहीं करना, तुम पुण्य आत्मा बन रहे हो तो कभी भी पाप नहीं करना, हमेशा बाबा से सीधा चलना चाहिए। बाबा को हम, बाबा से हम ठगी नहीं कर सकते हैं, सीधा चलना चाहिए। बाप कहते हैं मेरे साथ धर्मराज सदैव है ही है, ऐसे नहीं केवल अभी है धर्मराज, सदैव है ही है, लेकिन पर बाबा ये भी कहते हैं मेरे साथ साथ धर्मराज सदैव है ही है, द्वापर से लेकर सत्युग त्रेता में धर्मराज की जरूरत ही नहीं है, पर द्वापर से लेकर मेरे साथ धर्मराज है। सत्युग त्रेता में मेरे साथ धर्मराज नहीं रहता है, द्वापर से तुम मेरे अर्थ दान पुण्य करते आ रहे हो, है ना, धर्मराज के चित्रगुप्त है, वो लिखता रहता है हरे का सारा हिसाब किताब तो वो हिसाब किताब तो द्वापर युग से शुरू होता है ना, सतयुग त्रेता में तो है ही नहीं हिसाब किताब, जो अभी किया वही खाते हैं। द्वापर से तुम मेरे अर्थ दान पुण्य करते आ रहे हो, ईश्वर अर्पणम कहते हैं ना, गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से लिख दिया है श्री कृष्ण अर्पणम। अब बाबा कहते श्री कृष्ण अर्पणम करने से श्री कृष्ण थोड़ी देगा, पर परमात्मा अर्पणम करेंगे तब शिव बाबा देता है। तो डाल देते श्री कृष्ण का नाम डालने से फिर लिख दिया श्री कृष्ण अर्पणम, रिटर्न देने वाला तो एक बाप ही है, इसलिए श्री कृष्ण अर्पणम कहना रॉन्ग है, ईश्वर अर्पणम कहना ठीक है, भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्पणम कहना ठीक है। और कौन सा शब्द कहना रॉन्ग है, कोई श्री गणेश अर्पणम भी कहते हैं, हनुमान अर्पणम भी कहते हैं, बाबा कहते हैं श्री गणेश अर्पणम कहने से कुछ भी मिलेगा नहीं, फिर भी भावना का कुछ न कुछ देता आया हो, फिर भी देने वाला तो शिव बाबा है, भले किसने भी भावना रखी परंतु देगा तो शिव बाबा ही। भावना का कुछ भी कुछ न कुछ मैं देता आया हूँ सबको, मुझे तो कोई जानते ही नहीं है, अभी तुम बच्चे ही जानते हो। हम सब कुछ शिव बाबा को समर्पण कर रहे हैं। तो बाबा भी कहते हैं हम बाबा को सब समर्पण कर रहे हैं, फिर बाबा कहते हैं हम आए हैं तुमको 21 जन्म का वर्षा देने। अभी तो है ही उतरती कला, रावण राज्य में जो भी दान पुण्य आदि करते हैं वो पाप आत्माओं को ही देते हैं। कला उतरती ही जाती है, करके कुछ मिलता भी है तो भी अल्प काल के लिए, क्योंकि लेन देन तो पाप आत्माओं के साथ ही है ना, तो चलो कुछ मिलता भी है तो अल्प काल के लिए। अब तो तुमको 21 जन्मों के लिए मिलता है, उनको कहते ही है राम राज्य, ऐसे नहीं कहेंगे कि वह ईश्वर का राज्य है ना, ये भी है, ईश्वर तो राज्य करते ही नहीं है, राम राज्य कहते हैं, ऐसे नहीं कहेंगे वह ईश्वर का राज्य है, राज्य तो देवी देवताओं का है। तो बाप कहते हैं मैं तो राज्य करता ही नहीं हूँ, तुम्हारा जो आदि सनातन देवी देवता था, धर्म था, जो अब प्राय लोप है, सो अभी फिर से स्थापन हो रहा है। बाप तो कल्याणकारी है ही, उनको कहा ही जाता है, शिव बाबा को क्या कहा जाता है, सच्चा बाबा, सच्चा बाबा, गॉड इज ट्रुथ, परमात्मा सत्य है, वो सच्चा बाबा तुमको सच नॉलेज दे रहे हैं, अपनी और रचना के आदि मध्य अंत की। बाबा तुमको बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं, कितनी जबरदस्त कमाई है, कितनी जबरदस्त कमाई हम करते हैं। तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो, उन्होंने फिर वो हिंसा का चक्र दे दिया है, असल में है कौन सा चक्र, हिंसा का चक्र नहीं है, वो कौन सा चक्र है, ज्ञान का चक्र, परंतु ये ज्ञान तो प्रायलोप हो जाता है, तुम्हारे ये मुख्य चित्र है, कौन से हमारे मुख्य चित्र, त्रिमूर्ति गोला और झाड़, ये तीन हमारे मुख्य चित्र है, फिर बाद में सीढ़ी भी ऐड हुआ, तो सीढ़ी तो बाद में बनी, लेकिन यज्ञ में तो त्रिमूर्ति चक्र और झाड़ी था। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे ये मुख्य चित्र है, एक तरफ त्रिमूर्ति दूसरे तरफ चक्र और झाड़। तो बाबा ने समझाया है शास्त्रों में तो कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी है, सारा सूत ही मूंज गया है, सारा सूत ही मूंझा हुआ है, बाप के सिवाय कोई से सूत सुलझ नहीं सकता। बाप सम्मुख खुद आए हैं, कहते हैं मुझे ड्रामा अनुसार आना ही पड़ता है, मैं इस ड्रामा में बंधा हुआ हूँ, ये हो नहीं सकता, क्या नहीं हो सकता है, मैं ड्रामा में बंधा हुआ हूँ, आना ही है मुझे, पर क्या नहीं हो सकता है, ये हो नहीं सकता है कि मैं आऊँ ही नहीं, ऐसे नहीं हो सकता है कि मैं आऊँ ही नहीं, ऐसे भी नहीं हूँ, ऐसे भी नहीं है कि आकर मैं मरे हुए को जिंदा करूँ उसके लिए आऊँ, मरे हुए को जिंदा करने थोड़ी आऊंगा, चलो जिंदा हो भी गया फिर मरेगा तो सही ना एक दिन, तो उसके लिए तो मैं नहीं आऊंगा, ऐसे भी नहीं कि आकर मरे हुए को जिंदा कर दूं या कोई को बीमारी से छुड़ा दूं, इसीलिए आऊं बीमारी से छुड़ाने लिए। बहुत बच्चे कहते हैं बाबा हमारे पर कृपा करो, लेकिन यहाँ कृपा आदि की तो बात ही नहीं है, तुमने मुझे किस लिए बुलाया, भगवान को किस लिए बुलाया, तुमने मुझे इसलिए थोड़ी बुलाया कि आशीर्वाद करो हमें कोई घाटा ना पड़े इसीलिए आओ, नहीं तुम बुलाते ही हो हे पतित पावन आओ, पतित पावन आओ, तो पतितों को पावन करने आओ, बस इसी एक कार्य के लिए बुलाया है, दुख हरता सुख करता आओ, हमारे सब दुख दूर कर, हमारे हमें सुख दो। शरीर के दुख हरता तो डॉक्टर लोग भी होते हैं, मैं को इसीलिए आता हूं क्या? तुम कहते हो नई दुनिया स्वर्ग का मालिक बनाओ व शांति दो, ऐसे तो नहीं कहते हो कि हमारी बीमारी से आकर हमें छुड़ाओ? हमेशा के लिए शांति व मुक्ति तो मिल न सके, चलो कोई मुक्ति दिलाओ कहे भी, पर हमेशा के लिए तो मुक्ति मिल न सके। पाठ तो बजाना ही है, जो पीछे आते हैं उनको शांति कितनी मिलती है? बहुत शांति मिलती है, सारा पौना हिस्सा में तो परमधाम में वो आत्मा ही रहती है, तो कितनी शांति मिलती है। अभी तक आते रहते हैं तो कितना समय शांति में रहे होंगे, इतना समय तो शांति धाम में रहे ना। ड्रामा अनुसार जिनका पाठ है वही आएंगे अपने समय पर, पाठ बदल नहीं सकता। जिनको अंत में आना है वो अंत में आएंगे, ऐसे नहीं अगले कल्प में वो शुरू में आएंगे, नहीं। तो कई कहते हैं कि ऐसा भेदभाव क्यों करता है भगवान, वो क्यों नहीं स्वर्ग में आएंगे? लेकिन एक बार बाबा ने ये भी कहा था, वो पसंद ही नहीं करेंगे, उनको तो दुनिया में आना ही नहीं है, पर इसलिए ऊपर ही थे, लेकिन अंत में उनको आना तो पड़ता ही है। तो बाबा कहते पाठ बदल नहीं सकता। बाबा समझाते हैं शांति धाम में तो बहुत बहुत आत्माएं रहती है जो पिछाड़ी में आती है। देखो अभी कितनी वृद्धि हो गई, 100 साल के अंदर कितनी वृद्धि हो गई, तो अब पिछाड़ी में आती तो बहुत बहुत आत्माएं हैं। ये ड्रामा बना हुआ है, पिछाड़ी वालों को पिछाड़ी में आना है। ये झाड़ बना हुआ है, ये चित्र आदि जो बनाए हैं सब तुमको समझाना है, और भी चित्र निकलते रहेंगे। कल्प पहले मिसल ही निकलेंगे, 84 का विस्तार तो झाड़ में भी है, ड्रामा चक्र में भी है। अब फिर सीढ़ी निकाली है, उस समय सीढ़ी नई नई बनी थी तो सीढ़ी भी अभी निकाली है। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, बिल्कुल ही जैसे बाबा कहते बुद्धू है, बुद्धू। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है कि परम पिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर, शांति का सागर है, वो हमको इस तन द्वारा पढ़ा रहे हैं। तो बाप कहते हैं मैं आता ही उनमें हूँ, किनमें आता है बाबा? जो पहले पहले विश्व का मालिक था। तुम भी जानते हो बरोबर, हम भी ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बने हैं, ब्राह्मण ऐसे ही नहीं बने, ब्रह्मा द्वारा हम ब्राह्मण बनते हैं। गीता में तो ये बातें है ही नहीं कि शिव परमात्मा ऐसे ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बनाते हैं, ये बात नहीं लिखी है गीता में। तो बाप कहते हैं ये खुद ही नारायण की पूजा करने वाला था, बाबा खुद ही नारायण की पूजा करने वाला था, ट्रेन में भी मुसाफरी करते गीता पढ़ता था। ट्रेन में तो सारी रात रहना होता है ना, तो ट्रेन में भी मुसाफरी करते सवेरे उठकर बिना मुंह जूठा किए, बिना नागा, और हमेशा जब भी ट्रेन में बाबा सफर करते थे, हैदराबाद से बाबा कलकत्ता जाते थे ना, अपना उनकी बिजनेस तो कलकत्ता में थी, तो हैदराबाद भी जाते थे कलकत्ता बाय ट्रेन, वो सीधी ट्रेन थी, तो कलकत्ता बाबा जाते थे तो सवेरे सवेरे उठकर ट्रेन में नहा धोकर पहला काम क्या करते थे? गीता पढ़ते थे। तो जो ट्रेन में और लोग होते थे वो देखते थे ये कितना भगत आत्मा है, सवेरे नहा धो करके कैसे पहले गीता का पाठ करते हैं बिना मुंह जूठा किए। तो बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं ये खुद ही नारायण की पूजा करने वाला था, ट्रेन में भी मुसाफरी करते गीता पढ़ते थे। मनुष्य समझेंगे ये तो बड़ा धर्मात्मा है, सवेरे सवेरे नहा धो करके पहले गीता पढ़ रहा है, बड़ा धर्मात्मा है। अभी वो सब बातें भूलते जाते हैं, फिर भी इसने गीता आदि पढ़ी तो है ना, रमा बाबा में शिव बाबा की प्रवेशता हुई, ज्ञान बाबा ने देना शुरू किया, फिर वो पुस्तकें तो काम की नहीं हुई। हाँ, बाबा कई बार बताते थे ना कि बाबा को तो पता ही नहीं कि शिव बाबा आया है, तो बाबा तो गीता उठाते थे और जैसे हाथ में गीता उठाई शिव बाबा की प्रवेशता हो जाती थी और शिव बाबा सुनाने लगते थे, गीता का पुस्तक तो वहीं का वहीं। तो बाबा कहते हैं तो अभी वो सब बातें भूलते जाते हैं, फिर भी इसने गीता आदि पढ़ी तो है ना। बाबा कहते हैं मैं ये सब जानता हूँ, अभी तुम ये विचार करो कि हम किसके आगे बैठे हैं, जिससे विश्व का मालिक बनते हो फिर उनको घड़ी घड़ी भूल क्यों जाते हो। बाप कहते हैं अब देखो, आज बाबा ने हिसाब बताया, 16 घंटा तुमको फ्री देता हूँ, 24 घंटे में 16 घंटा तुमको फ्री देता हूँ, अपना लौकिक काम करो, नींद करो, जो भी कुछ आपका लौकिक है सब करो, बाकी अपनी सर्विस करो, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए सर्विस करो, 16 घंटा भले औरों के लिए, बाकी अपनी सर्विस करो। अपनी सर्विस करते हो गोया विश्व की सर्विस करते हो, अपनी सर्विस करते हो गोया विश्व की सर्विस करते हो, सेवा भी उसी में आ जाता है ना, 8 घंटा। इतना पुरुषार्थ करो जो कर्म करते कम से कम 8 घंटा बाप को याद करो। 8 घंटा बाप को याद करो का मतलब ये नहीं कि बैठकर 8 घंटा करना है, कर्म योगी तो हम है ही ना, तो 8 घंटा बाप को याद करो। अभी सारे दिन ये 8 घंटा याद नहीं कर सकते, बाबा नहीं, बाबा कहते नहीं कर सकते 8 घंटा याद। है किसी की जो कहे कि मैं, मेरी तो 8 घंटा 24 घंटे में याद है, भले कर्म करते हुए 8 घंटा याद है, हाथ उठाए। है, अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा पुरुषार्थ करे। बाकी बहनों ने एक भी हाथ नहीं उठाया, भाइयों ने तो फिर भी उठाया। तो बाबा कहते हैं अभी सारे दिन में 8 घंटा याद कर नहीं सकते, बाबा तो कहते नहीं कर सकते। वो अवस्था जब होगी कि 8 घंटा याद है, तब समझेंगे ये बहुत सर्विस करते हैं। वो सर्विस भी इतनी ही करेगा ना बाबा की, अगर 8 घंटा याद है। ऐसे मत समझो हम बहुत सर्विस करते हैं, भाषण बहुत फर्स्ट क्लास करते हैं, परंतु योग तो बिल्कुल नहीं है, योग की यात्रा ही मुख्य है। तो बात कहते हैं सिर पर विकर्मों का बोझ बहुत है, इसीलिए सवेरे उठकर बाप को याद करो। 2 से 5 बजे तक है फर्स्ट क्लास आयुमंडल है। हमारी कई माताएं 2 बजे उठ जाती है, जो माताएं 2 बजे उठ जाती है हाथ उठाओ। हाँ, 2 बजे उठ करके सीधा स्नान करती है, अब कई तो नहीं उठ पाते पर देखते हैं माताएं 2 बजे उठ के स्नान करती है, अच्छी बात है, हाथ उठा रहे हैं। 2 से 5 तक है फर्स्ट क्लास वायुमंडल। आत्मा रात को आत्म अभिमानी बन जाती है, जिसको नींद कहा जाता है, नींद में आत्म अभिमानी बन जाती है क्योंकि शरीर का भान तो रहता ही नहीं, जिसको नींद कहा जाता है। इसलिए बाप कहते हैं जितना हो सके बाप को याद करो। अब बाप कहते हैं मन मना भव, ये है चढ़ती कला का मंत्र। मन मना भव है चढ़ती कला का मंत्र। अच्छा अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, बाप से सीधा और सच्चा होकर चलना है, सीधा भी होकर चलना है और सच्चा भी होकर चलना है, हाँ टेढ़ा नहीं चलना है, हाँ झूठ नहीं चलेगा बाबा के पास। बाप से सीधा और सच्चा होकर चलना है, कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं इसीलिए सर्व का कल्याण करना है, सपूत बनना है। दूसरा, कर्म करते भी कम से कम 8 घंटा याद में जरूर रहना है, याद ही मुख्य है, इससे ही विकर्मों का बोझा उतरता है। बिना याद के विकर्मों का बोझा नहीं उतर सकता है। वरदान, दाता बन हर सेकंड हर संकल्प में दान करने वाले उदार चित महादानी भव। दाता बन हर सेकंड हर संकल्प में दान करने वाले उदार चित महादानी भव। आप दाता के बच्चे लेने वाले नहीं लेकिन देने वाले हो, हर सेकंड हर संकल्प में देना है। जब ऐसे दाता बन जाएंगे तब कहेंगे, क्या बनेंगे तब क्या कहलाएंगे, दाता बन जाएंगे हर सेकंड हर संकल्प, तब कहेंगे उदार चित महादानी। ऐसे महादानी बनने से महान शक्ति की प्राप्ति स्वतः होती है, लेकिन देने के लिए हमारे पास भी तो भंडारा भरपूर हो ना, लेकिन देने के लिए स्वयं का भंडारा भरपूर चाहिए। जो लेना था वो सब कुछ ले लिया, भंडारा भरपूर है, हाँ शिव के भंडारे भरपूर कालकंटक दूर, देते जाओ। जो लेना था वो सब कुछ ले लिया, बाकी रह गया देना। जो देते जाओ तो देते जाओ, देने से और भी भंडारा भरता जाएगा, देने से भंडारा खुटेगा नहीं, भंडारा भरता जाएगा। स्लोगन, हर सब्जेक्ट में फुल मार्क्स जमा करनी है तो कौन सा गुण चाहिए? हर सब्जेक्ट में फुल मार्क्स जमा करनी है तो गंभीरता का गुण धारण करो। गंभीरता माना बाह्यमुखी नहीं बनो, अंतर्मुखी बनो। काम की बात सुनाई बस, यहाँ 2 शब्द में काम हो सकता है, वह 10-20 शब्द बोलने की जरूरत नहीं है, है ना। कई छोटी सी बात का भी कितना विस्तार कर देते हैं और आखिर कहना क्या चाहते हैं वो समझ में नहीं आता है, विस्तार करते। तो बाबा कहते हैं नहीं, विस्तार में नहीं जाओ, गंभीर बनो। हर सब्जेक्ट में फुल मार्क्स जमा करनी है तो गंभीरता का गुण धारण करो। अव्यक्त इशारे, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। उसके अंतर्गत नम्रचित आत्मा, नम्रचित आत्मा सहज ही सुखदाता बन सकती है। अभिमानी व्यक्ति कभी भी सुखदाता नहीं बन सकता है, नम्रचित आत्मा सहज ही सुखदाता बन सकती है, लेकिन अभिमान नम्रचित बनने नहीं देता है। नम्रचित क्यों नहीं बन पाते? क्योंकि अभिमान विघ्न बन जाता है। नम्र अभिमान, लेकिन अभिमान नम्रचित बनने नहीं देता। नम्रचित नहीं तो क्या नहीं होगा? नम्रचित नहीं तो सेवा भी हो नहीं सकती है, सफलता नहीं मिलेगी सेवा में अगर नम्रचित नहीं। सेवाधारी की विशेषता सदा नम्रचित स्वयं झुका हुआ होगा, तब औरों को झुका सकेगा। जितना नम्रचित होंगे उतना निर्माण करेंगे, निर्माण का कार्य करेंगे जितना नम्रचित होंगे। जहाँ निर्माणता होगी वहाँ रोग नहीं होगा। नम्रता है तो रोग नहीं होगा, रूहानियत होगी। जैसे बाप कितना नम्रचित बनकर आते हैं, ऐसे फॉलो फादर, ऐसे फॉलो फादर, जैसे बाप कितना नम्रचित बनकर आते। अंत में तो वही तीन शब्द उच्चारण किए झुक करके, बच्चे सदा निराकारी निरंकारी निर्विकारी बनो। तो झुक कर बाबा ने ये तीन शब्द का नम्रता दिखाई और छुट्टी ले ली। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। चलो बाबा को याद करेंगे। नीचे से आज भी बहुत